العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. দেখো না, দু আদমি যারা খুশি আমার তেরকে নজওয়ানও খুলে আও, আপনি গদা ছোড় দে আ যাও। মোহতরম বুজুর্গ আর ভাইও, ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے دو زندگی اور دو موت رکھی ہے، دو زندگی اور دو موت۔ چاہے کسی ملک میں رہتا ہو، کسی بستی میں رہتا ہو، ساری دنیا پر حکومت کرتا ہو، ہر ایک کی اللہ نے دو زندگی اور دو موت رکھی ہے۔ دو موت اور ایک زندگی تک تو بہت سارے انسان متفق ہیں، ایک زندگی کے بارے میں انسان شک میں پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اس زندگی کا یقین آج کرے تو یہ غیب پر ایمان کہا جائے گا، اور انسان دھوکے سے نکل جائے گا اور اپنی زندگی ٹھیک کر لے گا۔ اور اگر اس نے اس زندگی کا یقین پیدا نہیں کیا تو انسان دھوکے سے نہیں نکلا، اور اس نے اپنی زندگی کا زمانہ، دنیا کی زندگی کا زمانہ اس نے کھو دیا تو سوائے حسرت اور افسوس کے اس کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے ایمانیات میں یہ بات ہے کہ ہم اس زندگی کو بولیں، سنیں، سمجھیں اور یقین میں لائیں، اور یقین میں لانے کے لیے اس کی دعوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے قبضے میں آسمان و زمین ہے، جس کے قبضے میں دنیا اور آخرت ہے، جس کے قبضے میں انسان اور جنات ہے، جس کے قبضے میں دنیا کی ساری مخلوق ہے، اور جو اپنی مخلوق پر اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ غالب ہے، اس اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یقین پیدا کیا جاتا ہے دعوت سے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بولیں، سنیں، سمجھیں اور یقین میں لائیں۔ ایک مثال، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا ہے اپنا تعارف کرتے ہوئے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ ہی بیج کو پھاڑتے ہیں، گٹلی کو پھاڑ کر اس میں سے درخت بناتے ہیں، اور یہ انسان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں اگاتا، کسان محنت کرتا ہے، بہت سے کسان محنت کر کے کچھ بھی نہیں پاتے، और एक आदमी सही तरतीब से मेहनत करता है, अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो अल्लाह ताला शान हो उस बीज का वजूद दे देता है। कितना ही सख्त बीज हो, अगर वो अल्लाह ताला की तरतीब पर दफन हुआ है तो फिर अल्लाह ताला शान उसको दरख्त बनाते हैं और अपनी कुदरत से बनाते हैं। बहुत से दरख्त ऐसे हैं कि जो इंसान ने लगाए भी नहीं, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़ारों सैकड़ों लाखों की तादाद में अल्लाह ताला ने दरख्त उगाए। और उस पर फल है, उस पर फल है, और वो फल का उसका कोई खाने वाला भी नहीं, वो नीचे गिरे हुए हैं और वहाँ के लोग उसे जानते नहीं या उन्हें पसंद नहीं। अल्लाह ने मुख्तलिफ जायके बनाए, तो ये अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया कि अल्लाह कौन है। का अल्लाह वो है जो गुठली और बीज को जमीन से फाड़ कर निकालता है। खजूर की गुठली कितनी सख्त है, लेकिन अल्लाह की तरतीब पर दफन हुई तो उस इतनी सी गुठली में एक दरख्त है और इतनी सी गुठली में सैकड़ों खजूरें हैं, दिखाई नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ने एक गुठली में सैकड़ों लाखों हजारों लाखों खजूर उसमें छुपा के रखे हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला जो बात फरमाते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत बड़ी है। जन्नत का जिक्र सुना कि कम से कम अदना से अदना जन्नती इस सारी दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मिलेगी। तो बोले वो जन्नत कहाँ होगी, एक आदमी को इतनी मिलेगी तो सैकड़ों लाखों करोड़ों। तो अल्लाह की कुदरत को आदमी यकीन में लाए तो उसे कोई चीज मुश्किल मालूम नहीं होगी। आज तक इंसानों ने जितना अनाज खाया है वो किसी ने हाथ से बनाया है? अरे बोलो, अल्लाह के खजाने से आया है, अल्लाह की कुदरत से आया है। और जमीन खोदो, जैसे नारियल की जमीन है तो जमीन में पानी है लेकिन खोदो नारियल है अंदर, और अल्लाह की कुदरत से आते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से 25 फीट 15 फीट 20 फीट 30 फीट 40 फीट, पुराने जमाने के दरख्त और बड़े होते थे तो उसमें बगैर मोटर के पानी चढ़ा देते हैं और सील बंद हो जाए। ये कौन करता है? और बारीक रगों में से पूरा पंप हो करके उसमें चला जाता है और उसका ढक्कन भी लगा दिया। ये अल्लाह की कुदरत है। क्या इस कुदरत को इंसानों में बोला जाएगा तो इंसानों में अल्लाह का तारुफ होगा, और जब अल्लाह की जात और सिफात का यकीन उठाएंगे और ईमान को मजबूत करेंगे और अल्लाह से डरने वाले बनेंगे तो अल्लाह इनकी रोजियां भी आसान कर देगा। अल्लाह आसमान और जमीन की बरकतें देगा। कि बात यकीन में लाने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह के बंदों में चल फिर करके इसकी दावत देना, इसको बोलना, और अल्लाह की जात और सिफात बयान हो रही हो तो आदमी ध्यान से सुने, और अल्लाह ताला के 99 नाम है, 101 कम, एक कम 100, और तमाम बेशतर नामों में अल्लाह की रहमत और करम का जिक्र है। और अल्लाह ताला ने अर्श पर लिखा है, सबकत रहमती अला गजबी, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब रहेगी। यही तो उसकी मेहरबानी है कि उसी का खा रहा है, उसी का पी रहा है, और नाफरमानी करे तो भी एकदम से पकड़ता नहीं है। फिरौन को लंबे जमाने तक छोड़ा है, वो समझाने के लिए موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ. قوم عاد کو سمجھانے کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا, قوم ثمود کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام بھیجے, اصحاب مدین کو سمجھانے کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ایسے ہر قوم, ہر خطہ, ہر برادری, ہر زبان میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے یہ بات سمجھانے کے. لوگوں, اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا کرو. کون اللہ؟ کہ وہ اللہ جس نے تم کو بنایا ہے. انسان اپنے آپ آیا ہے؟ نہیں, اللہ کی قدرت اس پر ہوئی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین ڈھانچے میں نکالا ہے. اسی لیے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں, خوبصورت ڈھانچے میں ہم نے ڈالا ہے. ایک گوشت, اور گوشت سے پہلے خون کا لوتھڑا, اور خون سے پہلے پانی, اسی پانی کو اللہ بڑھا کر خون بنا دے, اس خون کو گوشت بنا دے, اس گوشت میں ہڈیاں لگا دے اور انسان کے جوائنٹ بنا لے. وہ ماں کے پیٹ میں سب جوائنٹ تیار ہو گئے, 360 جوائنٹ ہے, خالی اتنے حصے میں 52 جوائنٹ ہے. آپ کو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے. تو ایکس رے والا بتاتا ہے یہ جوائنٹ آپ کا ٹوٹ گیا ہے, اور کتنی اچھی فنیشنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انتظام کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سانس لینے کے ایک نظام کے لیے اچھے اچھے جوائنٹ فٹ کر دیے, اور اس کی نالیاں لگا دی, اور نالیوں پر ایک نظام اللہ کا غیبی لگایا کہ انسان کھانا کھائے تو وہاں ایک پردہ لگایا, سانس لے تو وہ پردہ آگے پیچھے ہوگا, سانس کی نلی میں سانس جائے گا, کھانے کی نلی میں کھانا جائے گا. کس نے بنایا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو یہ سمجھایا. اس اللہ کی ذات و صفات کا یقین کر. تو اس نے یوں پوچھا کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا, ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو اس کی خلقت عطا فرمائی, اور اس کو اس کا کام بتا دیا کہ تجھے یہ کرنا ہے. درختوں کو بنایا تو اس سے کہا تجھے یوں اوپر چلنا ہے, بہت سے درختوں کو یوں کہا تمہیں سایہ دینا ہے, بہت سے درختوں کو کہا تم سیدھے چلنا ہے, بہت سے درخت نیچے پھیلائے, اس کے پتے وغیرہ اوپر ہے اور اس کا پھل کہاں ہے؟ زمین میں. ارے مانڈوی کئی تھا اسے کہاں ہوتی ہے؟ اور تم ہاتھ سے بنانے جاتے ہو؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, آج ہم نے اس کا ماحول چھوڑ دیا ہے گھروں میں بولنے کا. پہلے بڑی بوڑھی عورتیں اللہ کا نام اتنا لیتی تھی کہ بچے بچے کی زبان پر اللہ کا نام آتا تھا, اس کو اسکول بھیجے, مدرسے بھیجے تو اللہ کے نام کے ساتھ بھیجے, بیٹا بسم اللہ پڑھ کر نکلو, وہی کہتی اللہ تعالیٰ نے سونپیا, اللہ کے نام کے ساتھ جاؤ. اور بھی نہیں جانتی تھی تو اپنی زبان میں کہتی تھی, अल्लाह अच्छा करेगा, यानी गुमान अल्लाह के साथ अच्छा है। हमारे घरों से माहौल निकल रहा है और मखलूक है तो मखलूक मखलूक है, उसका तासुर दिल से निकालना है। जमीन में से सब कुछ आता हुआ नजर आता है, फिर भी जमीन का यकीन पैदा हो, ये इंसान के लिए अच्छी चीज नहीं है। जमीन अल्लाह की मखलूक है, इसमें अल्लाह का हुक्म होता है, इसमें से दिखाई पड़ता है जमीन से, और हो रहा है कहां से? अल्लाह से। बहुत से किसान है, फसल तैयार हुई और अल्लाह ताला ने आसमानी सुल्तानी भेजी तो बाद में सर पकड़ते हैं, इन्ना लमुग्रमून, हम तो कर्जदार हो गए, देवेदार हो गए। बल नहनु महरूमून, अरे हमारी किस्मत फूटे लिखी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये यकीन पैदा करने के लिए मेहनत है। मैं बोल रहा हूं, ये तो एक बात है, एक बयान है, लेकिन उसको पैदा करने के लिए अपने आप को अल्लाह के बंदों में चल फिर कर थकाना, नबी यही तो करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा तो उनका परवरदिगार मेरी जबान नहीं चलती, लुकनत है। मेरे भाई हारून को साथ में करो, तो जिम्मेदारी तो इनको दी थी, उन्होंने दरखास्त दी तो अल्लाह ताला ने उनकी दरखास्त को कबूल कर लिया और कहा, हारून को, आपके भाई हारून को हम आप नबी नबी बनाते हैं, आप दोनों मिलकर जाओ। तो नबुवत दी फिर भेजा। जाने से पहले मूसा कलीमुल्ला, परवरदिगार हमको बहुत डर लगता है, तो बहुत कहीं हमारे साथ कोई ज्यादती करेगा या फिर आपकी बात से बगावत करेगा। इन्ना नखाफ अन यफ़रुक़ अलैना औ अन यतगा, अल्लाह ताला का घबराओ नहीं, इन्ननी मअकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूं, अस्मा व अरा, मैं सुनता भी हूं देख भी रहा हूं, आप जाओ काम करो। इसलिए अल्लाह का काम करने वाले को ये बात भी सामने होनी चाहिए कि हमारी बात अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह ताला देख रहा है, घबराना नहीं चाहिए। और अल्लाह की मदद और ताईद का यकीन भी करना चाहिए। यकीन कमजोर होगा तो अमल कमजोर होगा। इसलिए मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मेहनत का नाम कहते थे कि अगर मैं इस मेहनत का कोई नाम रखता तो तहरीक ईमान रखता, तो लोगों ने तबलीग जमात नाम रख दिया, तहरीक ईमान। हम तो इससे ही चाहते हैं कि हर मुसलमान अपने ईमान के एतबार से मेहनत करने वाला बन जाए और अपने ईमान को मजबूत करे, और दुनिया में, दुनिया के ये सब, दुनिया में जितने इंसान बस रहे हैं ये सब भी अल्लाह के बंदे हैं और इन पर भी अल्लाह की जात और सिफात का यकीन करने की दावत अल्लाह की है। या अय्युहन्नास उबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, और दुनिया के इंसानों, उस रब से ताल्लुक जोड़ो, उस रब से एतकाद बनाओ, उस रब पर श्रद्धा और विश्वास रखो और दिल उसकी तरफ मोड़ो जिसने तुमको बनाया। तो दुनिया में जितने इंसान है सब पर अपने मालिक की इताअत और फरमा बरदारी की दावत है कि जिसने तुम्हारे तुमको बनाया है तो उस पर ईमान लाओ। उस पर ईमान लाओगे तो तुम्हारे अंदर में अच्छे अच्छी चीजें पैदा होगी, क्योंकि खूबियां और महासिन वाले अल्लाह है। आदमी अल्लाह की जात और सिफात का यकीन करेगा तो अल्लाह इसमें महासिन पैदा करेंगे, खूबियां बनाएंगे, फिर इंसान ठीक होगा। उस इंसान से अल्लाह ताला भी मोहब्बत करेंगे, मखलूक भी मोहब्बत करेंगे। भाई ईमानदार आदमी से हर कोई मोहब्बत करता है नहीं करता? कोई दुकानदार ईमानदार हो तो उस पर उसकी दुकान पर लेने आने वाला चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे शहरी हो, देहाती हो, उसे इत्मीनान होगा, ईमानदार व्यापारी, और सब उससे खुश है। तो ईमान से तो हर आदमी मोहब्बत करता है, ईमानदार से हर कोई मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला शानू ये बरकतें देंगे। तो तुम ईमान लाओ, ये जरूरी है। ये दुनिया के सब इंसानों पर अल्लाह ताला की जात और सिफात का यकीन करने की दावत अल्लाह की है। और अल्लाह ताला का देखो, ये दुनिया मैंने संवारी है और इसमें बहुत सी चीजें बहुत आकर्षक है, ये आकर्षक चीजें तुमको मुझसे गफलत में न डाले। ये मेरी मखलूक है, मैंने आजमाइश के लिए बनाया है, तुम इसमें रह करके मुझे भूल मत जाना। क्यों? अगर भूल जाएगा तो ये तेरी जिंदगी तो वक्त ही है, और हमने तुझे मौका दिया है अमल का, मेहनत का और अपनी तैयारी का और मेरे और खजानों के देखने का। अगर तूने इस पर मेहनत करके मुझे राजी कर लिया और मेरे अहकाम की पाबंदी कर ली, तो मेरे और खजाने जो छुपे हुए हैं उसकी राहत के दरवाजे तेरे लिए मौत से खुल जाएंगे। और अगर तूने इस पर एतकाद और यकीन न किया और ये तुझे जो चीजें आकर्षित थी उसी में लग करके, उसी में घुस करके तू मुझे भूल गया और आखिरत को भूल गया, मेरे पास आने को भूल गया, उस जिंदगी को यकीन में नहीं लाया, तो उस जितनी आकर्षक चीजों का मैंने तुझे मालिक बनाया था, ये चीजें छोड़ते हुए तेरा जी, तुझे आगे की चीज का यकीन ही नहीं है, तो तेरा जी घबराएगा इसको छोड़ने में, और हम तुझे छुड़ा के रहेंगे, हम तुझे छुड़ा के रहेंगे। फिर उनको 500 साल तक सर में दर्द नहीं हुआ, अल्लाह ने इतनी इतनी तंदुरुस्ती, इतनी कुव्वत अता फरमाई थी और हुकूमत दी थी, लेकिन वो इसी में मस्त रहा, उसे वो चीज ही आकर्षित नजर आई, उसी में गुस्सा रहा और उसी ताकत के बलबूते पर यूं कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो लोग इसको श्रद्धा करते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने मूसा और हारून से कहा, मूसा अलैहि सलाम से कहा, इज़हब इला फिरआउन इन्नहु तगा, उसके पास जाओ, उसने सरकशी कर रखी है, वो अल्लाह को भूल गया है। तो इन्होंने जाकर दावत दी तो उसने हुज्जत की, कहा तो तुमको अल्लाह ने भेजा है, कोई निशानी है? कहाँ है? अल्लाह ने निशानी देकर भेजा था, और वो निशानी क्या थी? वो मूसा अलैहि सलाम का असा था, असा। तो उसको अल्लाह के हुक्म से डालते थे, वो अजदहा बन जाता था, और पहली बार जब वो डाला तो वो खुद भी घबराया। अल्लाह के हुक्म से उसको पकड़ लिया, लाठी हो गया। और दूसरी निशानी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को मौजिज़ा ये अता फरमाया था कि अपना हाथ अपने बगल में दबाते और अल्लाह के हुक्म से खींच कर निकालते, सूरज की तरह चमकता था। वज़्मुम यदक इला जनाहिक तखरुज बैदाअ मिन गैरी सूइन आयतन उखरा, ये दूसरा मौजूदा भी ले जाओ, उसको समझ में आवे कि अल्लाह ने भेजा है, उसकी कुदरत बड़ी है। उसकी कुदरत में एक ही चीज में दो चीजें छुपी हुई है, पानी में नफा भी, पानी में नुकसान भी, आग में नफा भी, आग में नुकसान भी, हवा में नफा भी, हवा में नुकसान भी। इस फिजा में ऑक्सीजन अल्लाह ताला डालते हैं, अगर इसी ऑक्सीजन को बीमारी में तकसीम कर दे बदल दे तो इंसान सांस लेते ही मरे। किसी इलाके में गैस फटा था तो लोग यूं सांस लेते थे और गिरते थे, सांस लेते थे और गिरते थे। हिंदुस्तान में और अल्लाह के रास्ते में जमातें भी थी, हमारी बस्ती की जमात थी, हमारे शहर की जमात थी, तो उनको आंखों में कुछ जलन महसूस हुई, तो उनका पानी डालो पानी डालो, तो वुजू कर रहे थे, वुजू करके फिर पता चला कि तो नमाज की तरफ मुतवज्जे हुए। तो मेरे ख्याल से 30 साल तक वो आदमी वो जमात जिंदा रही है, और मस्जिद से बाहर देख रहे थे कि लाशों की लाशें जा रही है। इसलिए अल्लाह ताला दोनों चीजें की तासीर, नफा और नुकसान अल्लाह के कब्जे में है। फिर वो आदमी जो बयान कर रहा था उसने हर साल 4 महीने लगाए, उसकी घटना से लेकर आज तक कोई साल इसका 4 महीने से खाली नहीं गया। तुम भी नियत कर लो, भारी है यू, नियत करोगे ना तो अल्लाह ताला 8 महीने में 12 महीने की रोजी देगा। रोजी कम नहीं होती है, उसके कब्जे में है सब कुछ, वो जमा होती है और अल्लाह बरकत वाली बनाकर देते हैं। जितने जमात में लोग निकलते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो अपने कारोबार को छोड़ा है, नौकरी मजदूरी जो कुछ खेत दुकान सबको छोड़कर निकला है, वक्त पर जो रोजी अल्लाह ने लिखी है वो खाता है नहीं खाता है। अरे भाई जमात में तुम सब भूखे रहते हो, बल्कि ज्यादा खाते हो। एक नौजवान कहने लगा, मौल साहब जमात में तो बहुत खावा खवाई से हमके घेर आटलू न खावा तू। हाँ तो रोजी कम होती है, रोजी रुक जाती है। हमने उसको माल को रोजी समझा, माल जमा करने को रोजी समझते हैं। अल्लाह कहते हैं ये चीजें आकर्षक हमने बनाई है, तुम उसमें इतना जी मत डालना कि मुझे ही भूल जाओ। वो फिरौन भूल गया तो उसको तो रौब और दबदबा था, बादशाहत अल्लाह ने दी थी, सजा देता था तो इंसान को जिंदा जमीन पर सुलावे और लोहे की खीले और ठोक करके उसके बदन को जमीन से फिट करता था, सजा देता था। इसलिए अल्लाह कहते हैं वो दुनिया में इतनी ताकत वाला था लेकिन उसका क्या हशर हुआ मालूम है? वह फिरआउन ज़िल औताद, मेखों वाला फिरौन, अल्लदीन तगौ फिल बिलाद, जिन्होंने दुनिया में सरकशी मना रखी थी, सरकशी का माहौल बना रखा था। फाक्सरु फीहल फसाद, और उन्होंने जमीन में फसाद फैलाया। फसब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब, तेरे परवरदिगार का अजाब का कोड़ा इन पर गिरा। इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, तेरा परवरदिगार तो घाट में है। ऐसा नहीं है कि बेखबर है, ये तो इंसान को दुनिया की जिंदगी दी है, उससे समझाए दे कि ये जिंदगी है, ये जिंदगी का जो तू एतराफ करता है तो ऐसे जिंदा नहीं हुआ है। तो इस जिंदा होने से पहले, तुझे ये जिंदगी पाने से पहले तू मुर्दा था, जान हमने डाली है, जान हमने डाली है। तो रूह को कोई पकड़ सकता है? अबे मांगरोल में पकड़ते हैं क्या? मांगरोल वाले मच्छी पकड़ते हैं, रूह पकड़ते हैं? कोई नहीं पकड़ सकता। डॉक्टरों ने बहुत रिसर्च किए, जाति कैसी है अंदर से देखें, लेकिन नहीं समझ पाए। वो कोई एक बारीक चीज है जो इंसान के ढांचे में है, और वो अल्लाह की कुदरत पर है, अल्लाह की कुदरत के तहत है। ये सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने किया था। वह सालून का आन रूह, नबी जी रूह के बारे में लोग आपसे पूछते हैं, आप कह दे तुम्हारी समझ से बाहर की चीज है। कुल रूह मिन अमरे रब्बी, मेरे परवरदिगार का हुक्म है। तो बच्चे का ढांचा जब माँ के पेट में तैयार हो जाता है, तैयार होने से पहले तो वो मुर्दा है, पानी का कतरा मुर्दा है। जान जिस कतरे में अल्लाह ताला के हुक्म होता है कि इसको वजूद देना है, तो फिर अल्लाह उसका निजाम चलाते हैं। और वो पानी जब रहम में करार पाता है तो उस पर एक फरिश्ता है। फरिश्ता अल्लाह से कहता है कि ये जो पानी अंदर गया है, मुखल्लका और गैर मुखल्लका, अल्लाह इसका वजूद देना है या नहीं देना है। तो अल्लाह का हुक्म होता है मुखल्लका, तो फिर उसकी हिफाजत का इंतजाम अल्लाह की तरफ से चलता है, और गैर मुखल्लका तो जाय हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला इंसान से कहते हैं, तेरी दो जिंदगी और दो मौत बनाई है। दुनिया में आने से पहले मुर्दा था, चाहे बादशाह हो, चाहे वजीर हो, चाहे ताजिर हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे बिलियन हो, मिलियन हो, ट्रिलियन हो, दुनिया में आने से पहले तो मुर्दा ही था। फिर अल्लाह ताला का निजाम और उसकी कुदरत चली है, वो पानी बढ़ा, फिर वो खून की शक्ल इख्तियार किया, और खून बनकर फिर गोश्त का लोथड़ा बना, और फिर गोश्त के लोथड़े में अल्लाह ने हड्डियां पिरोई, और उसी गोश्त के लोथड़े में से फाड़ कर ये जिस्म का ढांचा तैयार किया। पांव दोनों अलग कर दिए, हाथ दोनों अलग कर दिए, उंगलियां अलग कर दी, एक निजाम बना दिया तेरी इन हड्डियों में कि जब ये बड़ा होगा इसको शुरू से दांत नहीं देंगे, ये शुरू से दांत देगा तो माँ की छाती भी काट खाएगा, और उसमें एक निजाम अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया। कहिया यूहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ओ दुनिया के इंसानों, एक अल्लाह की जात का एतराफ और यकीन दिल में लाओ, कामयाब हो जाओगे। फिर इसमें एक ऐसी मशीनरी फिट कर दी, उस मशीनरी के लिए बॉडी बनाई और उसको हड्डियां बाहर फिटिंग की कि वे फिर से बहुत नाजुक होते हैं, तो उसकी हिफाजत के लिए पसलियां, और उसमें सांस लेना है तो बीच में गैप, और वह इसके लिए एक ऐसे दिल की जरूरत है कि इसके बदन में जितनी रगे हैं वो रगों के अंदर में खून पहुंचाता रहे। तो अल्लाह ने इसके धबकारे इस अंदाज से बनाए कि वो खून ऊपर देता रहता है। तो आंख की रगें बहुत बाल से ज्यादा बारीक होती है, उन रगों में भी वो हृदय खून पहुंचा देता है। कान में बारीक पर्दे लगाए हैं और उसकी सुनवाई के लिए एक निजाम बनाया है कि आपके जो कोई बोलेगा उसकी आवाज का अक्स वहां जाएगा, वो अक्स रिटर्न होकर उसके अंदर में वो आवाज जाएगी दिमाग में और इंसान समझ पाएगा। तो अल्लाह ताला उन तक भी वो पहुंचा देते हैं, और कभी उन पर्दों के पास पानी पड़ जाए तो इंसान कहते हैं कान बहुत दुखे थे, सर्दी हो जाए तो कि भाई हामड़वानू ओछू थी गयु, अल्लाह का निजाम है। फिर उसी उसी गोश में से इंसान का चेहरा अलग कर दिया, रगे बना दी अंदर, पूरी मशीनरी फिट कर दी, फिर इसका चेहरा, और चेहरे में यही गोश में फिर ये शिगाफ लगाकर आंखें बनाई, एक सुराख लगाकर कान का एक अच्छा ढांचा बनाया, और फिर उसके बाद उसका मुंह बनाया, उस मुंह के लिए उसके गेट बनाए, उसके गेट बनाए। अल्लाह कहते अलम नजअल लहू ऐनैन, इंसान देखता नहीं, अपने हमने अपनी कुदरत से उसके लिए दो आंखें बनाई है। वलिसान व शफतैन, जबान भी बनाई, होठ भी बनाए। वहदैनाहु नजदैन, उसको इतना ज्ञान, उसका दिमाग, इतनी बुद्धि तो हमने दी है कि ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, हम उसको उसको इतनी समझ दिए ये अच्छा है ये बुरा है। अब वो उसको इख्तियार और पावर दिया है, इस रास्ते पर जाएगा तो वो मंजिल गलत, इस रास्ते पर जाएगा वो मंजिल सही है, इस रास्ते पर जाएगा वो मंजिल गलत है। वहदैनाहु नजदैन, हमने दोनों रास्ते समझाए, नेकी और भलाई का रास्ता अल्लाह की खुशनुदी वाला रास्ता है, और मासियत और गुनाह का रास्ता वो अल्लाह की नाराजगी वाला रास्ता है। अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी वाला रास्ता जन्नत तक जाएगा, और अल्लाह की नाराजगी और गुस्से वाला मासियत वाला रास्ता अल्लाह के गुस्से तक जाएगा, और अल्लाह का गुस्सा और उसका आखिरी और इंतहाई जगह जो है वो जहन्नम है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वसाअत मसीरा, बहुत बुरा ठिकाना है। नेकी वाला रास्ता तो अल्लाह कहते हैं निअमत सवाब, बहुत अच्छा बदले की जगह है। वह हुस्न मआब, और मजे की जिंदगी है। तो पहले मुर्दा था, जिंदगी डाली अल्लाह ने, जिंदगी अल्लाह ने डाली। अब फिर इसके बाद अल्लाह कहते तुम कहीं भी, तुमको पावर दिया है, छुप भी जाओगे हम तुमको वहां जाके पकड़ेंगे। तो फिरौन अपने महल में था, और महल में यूं कहता था अलैसा ली मुल्कु मिस्र, मेरे लिए मिस्र की बादशाहत नहीं है। वहादील अनहारु तजरी मिन तहती, मेरे बंगले और महल के पास से तो नहरें बहती है। वो मूसा, इसको तो बोलना भी नहीं आता, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वला यकादु युबीन, सब बोलता भी नहीं है, अच्छा कौन है। तो अल्लाह कहते हैं अच्छाई का मेयार दुनिया की चीजें नहीं है, मादियात नहीं है, दुनिया की शक्लें नहीं है, अच्छाई की मेयार इंसान का दिल बनना है, उस दिल में अल्लाह बसे, मालिक बसे, राजिक बसे, खालिक बसे, इसके बसने की जगह है। और लन का इसमें इसको बसाना, दिल का एतिकाद और यकीन और सद्धा सही कर लिया। हदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते बताए। अब इस दुनिया में तुझे पावर दिया है, आंखें भी दी है, जबान भी दी है, कान दिए हैं, दिल बनाया है तेरे पहलू में, और ये दिल आज तक खैर व आफियत के साथ एक एक मिनट में कितनी बार चलता है ये पूछो डॉक्टरों से। बाईपास के लिए थोड़ा सा हार लगाते हैं, कहा साहब 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा, वो नली खाली चेंज करने का, और इतनी देर के लिए मस्नूई दिल कि वो ब्लड वहां ट्रांसफर कर दे, फिर उसके बाद उसको वो नली वहां ज्वाइंट कर दे। तो अल्लाह कहते हैं तुझे अकल नहीं है, मुर्दा था, जिंदगी मैंने दी, फिर मुर्दा हो जाएगा। तो फिरौन जो कहता था मैं तो बादशाहत में हूं, अल्लाह ताला ने उसको समंदर में पकड़ा। कहां पकड़ा? समंदर में पकड़ा, वो पकड़ा उसी गुमान में। मूसा इस तरफ तो मूसा अलैहि सलाम से कहा मेरे ईमान वाले बंदों को लेकर ये शहर छोड़ो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, चलो अनसरी बि इबादी लैलन, रात के वक्त में मेरे बंदों को लेकर चलो। और अल्लाह ने पहले कह दिया, इन्नकुम मुत्तबाउन, तुम्हारा पीछा भी किया जाएगा। तुम्हारा हर जमाने में ऐसा हुआ है, ईमान और अमाल वालों के साथ हर जमाने में ऐसा हुआ है, लेकिन ईमान और अमाल वाले का भरोसा किस पर होता है? अल्लाह पर भरोसा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम तो दाई अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे, बनी इसराइल के जिम्मे ये काम नहीं था। हमारे जिम्मे तो ये काम है, और दावत के साथ अल्लाह की नुसरत है, अल्लाह की मदद है, अल्लाह साथ में है। मूसा और हारून से अल्लाह ने कहा, जाओ, चाहे कितना बड़ा है, तुम जाके बात करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सुनते हैं और हम देख भी रहे हैं। वो कुछ करेगा तो हम देख भी लेंगे। तो अल्लाह की ताकत बड़ी है, और अल्लाह ताला एक चीज में दोनों चीजें रखी है, नफा भी नुकसान भी, नफा भी नुकसान भी। तो इधर इनको निकाला, और पता चला कि यार ये सब लोग सुबह काम को नहीं आए, कहाँ चले गए सब? तो कहा कि भाई ये तो यहां से गांव गए। तो कि चलो लाओ लश्कर, लाओ, कहाँ भागे जा रहे हैं, पकड़ो 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 इनको। तो लाओ लश्कर के साथ निकला, फौज के साथ निकला, हथियारों के साथ निकला, पूरी ताकत के साथ निकला। और सुबह होते होते देखा वो नजर आ रहा है, तो बनी इसराइल घबराए। ओ, तो मूसा अलैहि सलाम से कहने लगे, इन्ना लमुद्रकून, मूसा अब तो पकड़े गए, अब तो पकड़े गए। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा, घबराओ नहीं, कल्ला इन्न माईया रब्बी सयहदीन, मैं उसके हुक्म पर खड़ा हूं, उसके हुक्म पर खड़े होने की वजह से वो मेरे साथ है, और वो मेरा हामी और मददगार है, वो मुझे नजात देगा और मुझे रास्ता बताएगा कि अब क्या करना है। जैसे जैसे करीब आ रहा है, कौम के वो जज्बात घबराने वाले बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे करीब आ रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद के इंतजार में। किसके इंतजार में? अल्लाह की मदद के इंतजार में। अब बिल्कुल करीब आना आ रहा है, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि अनिद्रिब बिअसाकल बहर, मूसा अपना असा समंदर पर मारो। अब ये हुक्म था, क्या था? हुक्म था, अनिद्रिब बिअसाकल बहर, अपने असा को समंदर पर पीटो। दुश्मन पीछे है, समंदर को पीटने को कह रहे हैं अल्लाह। तुम्हें समझ में नहीं आएगा अल्लाह का हुक्म? अल्लाह का हुक्म इंसान को नजात के लिए है, अल्लाह का हुक्म इंसान को कामयाब करने के लिए है, नाकाम करने के लिए नहीं है। ये तो इंसान की नादानी है। वो अपने अकल में जो समझ में आए वो समझ रहा है दीन। इसलिए सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने, शेर खुदा, यूं कहते थे लोगों से, देखो अल्लाह तआला ने अकल पर दीन रखा होता तो अकल का तकाजा ये था कि मोजे पर मसा नीचे होना चाहिए। अरे भाई, मोजे पर मसा का हुक्म है ना, तो मोजे पर मसा नीचे होना चाहिए, नीचे गंदा होता है, और शरीयत यूं कह रहे हैं मोजे पर मसा ऊपर होता है। अरे मोजे पर मसा के अहकाम है नहीं है? तो अकल पर नहीं है। अकल पर होता तो देखो अल्लाह ताला कह रहे हैं, सदके को अल्लाह बढ़ाते हैं। तो सदके में होता क्या है भाई? एक आदमी के पास 100 रुपया है, उसके पास से 10 रुपया सदका किया, तो आंख तो देख रही है 90 हो गए, और अल्लाह कह रहे हैं वयुर्बि सदकात, अल्लाह सदके को बढ़ाती है। आंख देख रही है घट गया, और अल्लाह खबर दे रहे हैं हम इसको बढ़ाते हैं, और सूद को अल्लाह कहते हैं मिटाते हैं। एक आदमी ने 100 रुपया दिया, वो कहते हैं महीने के बाद 110 दे जाना। तो 110 आए तो आंख देख रही है बढ़ गया, और अल्लाह कह रहे हैं यम हकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाते हैं। तो हुक्म कामयाब करने के लिए होता है। मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी कह सकते थे कि फिरौन के सर पर जाकर मारो, लेकिन अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही जानते हैं। क्या समंदर पीटो, तो समंदर पर लाठी मारी, रास्ते बन गए 12 रास्ते। कितने? 12 रास्ते, 12 कबीले, 12 रास्ते। तो बनी इसराइल ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम का, चलो इसमें अल्लाह ने रास्ता दिया है, इसमें पार उतरो। तो चलने लगे, तो मूसा से कहने लगे आपके साथ तो हम बात कर रहे हैं, हमारा कबीला है, दूसरे 12 कबीले तो इधर उधर हैं, वो हमको नजर आने चाहिए। तो अल्लाह ने पानी को शीशे की तरह बना दिया, कांच, तो उसमें देखते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और उसमें खिड़कियां, बातें करते जा रहे हैं। जब ये रास्ते बनते देखे तो फिरौन अपने लश्कर से कहने लगा, देखो अपना पावर देख लिया, रास्ता बन गया ना। अपना पावर कैसा चला, चल गया ना, देखो पानी पर भी। तो रब्बुकुमुल आला का दावा किया था, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं, तो जो आता था सजदा करे। देखो हो गया ना, चलो। तो जिस घोड़े पर फिरौन बैठा था ना, तो घोड़ा तो अल्लाह की मखलूक है, वो गूंगी मखलूक तो बहुत सी गैब की चीजें देख रही है। तो उसने देखा कि आगे तो इसकी मौत है, मैं भी मरूंगा। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को घोड़ी देकर भेजा। क्या देकर भेजा? तो वो आवाज करे तो घोड़ा शहवत में उसके पीछे जा रहे। समझे नहीं समझे? घोड़ी देखी तो सूंघने चला गया, और शहवत ऐसी होती है, अंधी इंसान को हलाकत में ले जा रहे। इसलिए ईमान वाले पाबंद है का गैर महरम को ना देखो। अगर ये आंख गलत चली गई तो इंसान अल्लाह की नाराजगी तक चला जाएगा। ये इंतजाम है हमारे दीन में, ये तालीम है, प्यारे आका का दीन है। वो एक जिंदगी सिखा रहे हैं, वो एक जिंदगी समझा रहे हैं। उस जिंदगी को लेना है, इसमें नजात है। बस वो घोड़ी के पीछे चला, तो अल्लाह के खजाने की गैबी घोड़ी थी, तो उसके पीछे पीछे जाया। तो फिर वो चला कि भाई ये अगर ये घोड़ा पीछे हट गया तो सारा लश्कर पीछा जाएगा। अल्लाह कहते हैं इनको तो पकड़ना है। हाँ, और जितने उसके दरबारी है और उसके वो थे ना, वो जरा सबको पकड़ना है। सभी ने इनको सताने का प्लान बनाया था ना, सबको पकड़ना है। तो अल्लाह की पकड़ ऐसे होती है। हाँ, दाखिल हुआ, जा रहा है। वो लोग आधे रास्ते पहुंच गए थे और ये अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये आधे रास्ते पर पहुंचे, वहां तक वो बोलो वो निकल गए। जैसे ये पहुंचे बीचों बीच, तो अल्लाह का हुक्म हो गया पानी से कि भाई अब पर्दे निकाल दो, वो कांच खोल दो। तो फाटक खुल गया, फाटक। अल्लाह कहते हैं वो जो हमने वो दीवार बनाई थी ना, कत्ताउदिल अजीम, मजबूत एक वो हो ना दीवार, इस तरह से जैसे पत्थर की दीवार हो, ऐसे ऐसे बना दिया था, पानी को ऐसे रोक दिया। और जब बीच में पहुंचा तो मूसा जो बात समझा रहे थे अब ये डुबकियां खाने लगा, तो अब इसको अपनी मौत नजर आई, तो मौत नजर आई तो कहने लगा, आमन तो बिल्लदी आमनत भी बनो इसराइल, मैं उस अल्लाह पर ईमान लाता हूं जिस अल्लाह पर बनी इसराइल ईमान लाए। तो अल्लाह की नजर में तो वो दुनिया में बागी था, तो जिब्रील अली सलाम ने उसके मुंह में मुट्टी मट्टी ठोसी, अरे इसने तो बहुत फसाद मचाया है दुनिया में, तो इसका ईमान कबूल हो गया तो ये इबरत नहीं होगा, ठूंसा इसके मुंह में। और खत्म हुआ। और जितनी चीजें उसने पीछे छोड़ी थी, बनी इसराइल को उसका वारिस बनाया। सुम्मा औरसना बनी इसराइल, फिर हमने बनी इसराइल को इसका वारिस बनाया। वाओरसना कौमन आखरी, हमने दूसरे लोगों को उनकी जगह बिठाया। जमीन तो अल्लाह की है, इसमें हुक्म अल्लाह का चलता है, इंसान को पावर दिया है और उसको यूं कहा, मेरे हुक्मों की ताबेदारी करते हुए तू मेरे हुक्मों पर चल, मैं तुझे कामयाब करूंगा। हुक्मों वाली जिंदगी कामयाबी वाली है, और बगावत वाली जिंदगी, हुक्मों को तोड़ कर नाफरमानी वाली जिंदगी नाकामी वाली है। हाँ थोड़ा पावर है तो वो वहां तक जाएगा। दुनिया में ऐसे बड़े बड़े लोग आए, नमरूद आया, शद्दाद आया, कौम समूद आई, कौम आद आई। कौम आद तो कैसे थे, एक एक आदमी यूं झाड़ को यूं पकड़ के यूं उखेड़ ले। हाँ लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी समझाया कि देखो तुम मुर्दा थे, जिंदगी हमने दी, मुर्दा हो जाओगे, इसके बाद जिंदा किए जाओगे। तो तीन तक तो इंसान इत्तेफाक करता है, पहले नहीं था, जिंदगी आई, मरूंगा, मरने से कोई इनकार नहीं करता। अब इसके बाद का जो मसला है वो अल्लाह ने कैद में रखा है, इसको समझो। और उसका बनना ये दुनिया की जिंदगी पर मौकूफ है, इसलिए प्यारे नबी की तालीम है, खाने पीने से नहीं रोका, ब्याह शादी से नहीं रोका, घर मकान और कपड़े लत्ते से नहीं रोका है, क्या उसको हुक्म पर लाओ, तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पहनना, तुम्हारा ओढ़ना, तुम्हारा शादी करना, दीन बना दो, इबादत बन जाएगा। हशर के मैदान में, मीजान में जो चीज तोली जाएगी, आदमी का वो लुकमा भी होगा जो अपने घर वालों को खिलाता है, वो भी नेकी बनाकर लिखा जाएगा। कयामत के दिन मीजान में सबसे ज्यादा भारी और वजनी चीज जो होगी वो होगी आदमी के अखलाक। क्या होंगे? आज तो हम थोड़ी थोड़ी बात पर मुसलमान से नाराज हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात, पता नहीं इतनी इतनी बड़ी, समझ गए? नहीं समझे? ये बहुत सीधा साधा है मगरोल वाला, टक्कर हो जाए तो फिर इतनी बड़ी बड़ी, तो मुसलमान का एहतराम नहीं? अल्लाह के नबी ने तालीम दी है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो उसे झूठ नहीं बोलेगा, उससे खयानत नहीं करेगा, उसे धोखा नहीं देगा। उसको ऐसी नजर से भी नहीं देखेगा जिससे उसको तकलीफ हो। क्यों? उसके दिल में ईमान है, ईमान की वजह से वो अल्लाह के यहां कीमती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने एक जबरदस्त मेहनत दी है ईमान यकीन के बनाने की। ये कोई बहलाने फुसलाने की बात नहीं है, ये एक जिंदगी है जो इंसानों के सामने आने वाली है। हाँ इंसानों के सामने आने वाली है, चाहे कोई कहीं बैठा हो, पूरी दुनिया का बादशाह बना हो, तो भी अल्लाह के सामने खड़ा होगा। इसलिए हदीसों में है कि जो आदमी नमाज का एहतमाम करेगा तो अल्लाह ताला उसका हिसाब आसान कर देंगे, उसका हश्र भी अच्छा कर देंगे। वो कहते जो नमाज का एहतमाम नहीं करता तो उसको 15 तरीके से अजाब होता है, तो मरने के बाद जो है ना वो एक अजाब ये होगा, उसका हशर फिरौन हमान उबई बिन खलब के साथ होगा। ऐसे ही कह दिया है। नमाज छोड़ने वाले से पूछा जाएगा नमाज छोड़ दी, क्यों छोड़ी? कहा मेरे बच्चे ज्यादा थे, तो उसी में लगकर भूल गया। कोई कहेगा मेरे पास तो देश का बंदोबस्त बहुत भारी करना था, तो अल्लाह ताला सुलेमान से कहेंगे, सुलेमान को ला, तुम्हारी तो इतनी हुकूमत थी, सुलेमान को तो हमने सारी दुनिया की बादशाह दी थी, और तुम्हारी तो जमीनी हुकूमत थी, उनकी तो परिंदों पर भी थी, और तुम्हारी तो ये खाली नीचे की फौज पर थी, उनकी हुकूमत तो जिन्नातों पर भी थी। पूछो इनकी नमाज गई है? इनका हुक्म टूटा है? क्या जवाब देगा? इंसान शर्मिंदा होगा। और जिसके पास ईमान नहीं होगा वो तो अपना हाथ चबाएगा, और चबाते चबाते कोहनी तक पहुंच जाएगा। अल्लाह कहते हैं वयौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैही यकूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। जालिम आदमी, जालिम कौन है? कहा अल्लाह के साथ कोई और चीज जाने, अल्लाह की जात का यकीन ही पैदा नहीं किया, मखलूकात का यकीन पैदा किया, तो जालिम अपना हाथ काटेगा। वो कहेगा काश के पैगंबर के साथ अपना रिश्ता ही जोड़ लेता, अफसोस करेगा। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। ये काश के फुलाने को दोस्त नहीं बनाता, उसकी दोस्ती में मेरी खटिया खड़ी हो गई, इसकी सलाह सूचन में मैं मर गया हूं, ये मेरा सलाहकार गलत निकला। लकद अदल्लनी अनि जिक्री बाद इद जाअनी। अच्छी बात तो मेरे पास पहुंच गई थी, लेकिन इसकी सलाह में आकर मैंने रास्ता बदल दिया, वरना रास्ता तो वही सीधा था। शैतान के कहने में आएगा तो शैतान को मलामत करेगा, वह दोजख में पहुंचा तो शैतान को साला बदमाश तेरी वजह से, तो कहते भाई ए भाई चुप रहो चुप रहो, सब खामोश हो जाओ, तो अल्लाह इसको थोड़ा चांस देंगे, वो वहां स्टेज बनाएगा बड़ा और जहन्नम में सबको देखेगा, तो सब देखेंगे हाँ ये अपना बॉस आ गया बॉस, अगर चुप हो जाओ तो उसकी तकरीर होगी, वो तकरीर अल्लाह ने दुनिया में हमको सुनाई, ऐसा होगा तुम समझ जाओ। وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل इन ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। ये उसका भाषण है दोज़ख का, जो अल्लाह ने दुनिया में ईमान वालों को सुना दिया ताकि धोखे में ना आए। सुभान अल्लाह, अभी हम भी पढ़ा दूं या इस भाषण का तर्जुमा कर दूं? लेकिन लूंगा ना कुछ, भाषण सुनने के बाद अपनों को निकलना पड़ेगा, वो तश्किल के वक्त वही कहेगा, फिर क्या होगा? और तश्किल के वक्त इंसान को यही शैतान धोखा डालता है, और इसकी चालबाज नफ्स से है तो वो दूर से इशारा करता है इसको पकड़ियो छोड़ियो मत, समझा दियो कुछ भी, वो तश्किल वालों को चकमा देता है। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, माल दिया, फुर्सत दी, फिर तश्किल वालों को चकमा दिया, क्या अल्लाह को धोखा देगा कोई इंसान? ना, नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये चीज मुश्किल इसलिए है कि माहौल में नहीं, और जब माहौल में आ जाएगी तो हर आदमी के लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह हम सब का माहौल अच्छा बना। तो भाषण करेगा और कहेगा कि देखो, अल्लाह ताला ने जो तुमसे वादा किया था वो सच्चा वादा किया था, और मैंने तुम्हारे को जो समझाया था ने वो तो झूठा था। तब क्या करेगा उसको? तो यूं शैतान ने समझाया था, भाई की जमीन दबा लेना, वो तेरे को बहुत फायदा हो जाएगा, तेरी औलाद कामयाब हो जाएगी। वो अल्लाह के यहाँ वादा तो कामयाबी तो सच्चाई पर है, धोखे पर कामयाबी है। और देखो अल्लाह का वादा, अरे उसके बाद तुमको यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, उसने यूं समझाया था कि बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। उस फायदे में इंसान को अल्लाह के अवामिर से हटा दिया, यूं हटाया। तो कि देखो अल्लाह का वादा गैप में था, नजर नहीं आता था, अल्लाह का वादा सच्चा है, देखो नजर आ गया ना, अपने पहुंच गए ना ठिकाने पर। ये वादा तो था ना कि गलत काम करोगे, दोनों रास्ते समझाए थे, सीधा रास्ता भी समझाया था और गलत रास्ते से अंजाम क्या होगा वो भी समझाया था। इन अल्लाह वादकुम वादल हक वादतुकुम फखलफतुकुम, मैंने भी तुमसे वादा किया था कुछ नहीं होगा, कुछ दिखता नहीं है, और कुछ भी मरने के बाद क्या होगा, कोई दोबारा कहीं जिंदा होता होगा, मट्टी हो जाएंगे और रल मिल जाएंगे, क्या ऐसा कहीं जिंदा होता होगा? वादतुकुम फखलफतुकुम, मैं अब ना कहता हूं भाई मेरी बात झूठी है। और फिर वो कहेगा, हाथ उठा देगा, अरे भाई मैंने तुमको कोई गला पकड़ पकड़ के रस्सी में बांध बांध कर थोड़ा लाया था, मैंने तो खाली इशारा किया था। वो तो तुम आ जाते थे। तो वमा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दावतुकुम, खाली मैंने भी दावत दी भाई, तो मैंने भी दावत दी, तो तुम मान जाते थे, अल्लाह की बात क्यों नहीं मानी? तो झाड़ देगा कि भाई मारी कहीं जवाबदारी नहीं, मैं कहीं तमने पकड़ी पकड़ी न थोड़ो लाया, तो तमने कहीं गला में रस्सी बांधी न थोड़ो लाया, तो दुनिया में आवाज चलती थी, मैंने भी एक आवाज लगाई, तुमने ये आवाज पर ध्यान नहीं दिया, ये आवाज पर ध्यान दिया, तो तुम अपनी जात को कोसो, मेरे को काहे को कोसते हो? फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। और भाई देखो आज मेरे से कहीं होएगा नहीं, तुम्हारी फरियाद मैं नहीं दूर कर सकता, तुम्हारी फरियाद को मैं नहीं सुन सकता, मेरी फरियाद जो मुझे सबसे ज्यादा सजा दी जा रही है, तो मेरी फरियाद तुम भी नहीं दूर कर सकते। जाओ जाओ, तुमने मेरे साथ जो दोस्ती बनाई थी, मैं ना कहता हूं तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे नहीं हो, तुमने मुझे बड़ा बनाया था, मेरे कहने में आए थे, मेरे को खुदा का दर्जा दिया था, अल्लाह की बात नहीं मानी, मेरी बात मानी, मैं नहीं हूं, जाओ भाई तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, लो हो गया। तो आदमी पछताएगा, इसलिए हलकों में बैठकर अल्लाह रसूल के वादों को, अल्लाह रसूल की वाइदों को आदमी एहतमाम से सुने, ताकि एक यकीन की कैफियत बने। ईमान बिल गैब कहते ही उसी को है कि अल्लाह और उसके रसूल की खबरों पर बिन देखे आंख बंद करके ऐसा यकीन करना जैसे खबर दी है वैसा है। इसलिए अभी तालीम के हलके लगेंगे, लगेंगे ना तो बाहर घूमेंगे, बल्कि बाहर से तालीम से पहले लोगों को लेकर आएंगे, अल्लाह की बात चलाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। वो खाली यहां नहीं, मोहल्ले में, मस्जिद में, जहां कहीं तालीम होगी तो हमारी रोजाना की गिजा जैसे खाते हैं, ऐसे हमारी रोजाना फजाइल की तालीम गिजा के तौर पर हम खाएंगे। मोहल्ले को संवारेंगे, कैसे संवारोगे भाई, घर घर फर्द फर्द से मिलेंगे। मस्तूरात को संवारेंगे, कैसे संवारेंगे भाई, मस्तूरात में दीन आ जाए तो उसके लिए उनकी तालीम का हल्का होता है, उस दिन अपने घर वालों को उन पर से बोझ हल्का करके उनको भेजेंगे। और क्या होगा, हमारे अतराफ को संवारेंगे। कभी 3 दिन के जरिए से कुर्ब व जवार की बस्तियों को संवारेंगे, वहाँ अल्लाह की बात चलाएंगे। एक ऐसी मेहनत का निज़ाम है जो अपनी जात से लेकर के सारे आलम तक जुड़ा हुआ है, और अल्लाह की ताईद और नुसरत से ही ये काम चला है। न ये हुकूमत के जोर से चला है, न पैसों के जोर से चला है, न दौलत के जोर पर चला है, अल्लाह ने चलाया है। वो अल्लाह के बंदे थे जो गुड़ चने खा करके शुरू में काम करके निकल गए, और अल्लाह ने इनका दर्जा बढ़ा दिया। हाँ, वो तो निकल गए खैरियत से, हम फंस गए हैं। कोई कौन सी शक्ल किस चीज को कौन आकर्षित कर रहा है, वो हर आदमी अपने आप को देख ले। इसको अल्लाह के लिए छोड़ना भी सीखे, अल्लाह के लिए पकड़ना भी सीखे। इसके लिए कहते हैं 4 महीने, पकड़ना भी सीखे और बोल रहे हैं, छोड़ने की बात आती है तो बहुत आहिस्ता बोलते हो, पकड़ने की बात आती है तो बहुत जोर से बोलते हो। अल्लाह के लिए पकड़ना भी सीखे, अल्लाह के लिए हाँ? अरे मेरे तो 62 साल की उम्र है, जोर से बोलो ना। अल्लाह के लिए पकड़ना भी सीखे, अल्लाह के लिए कब? आदमी फैसला करे, जब फैसला करे तो कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ने इंसान को हिम्मत का जौहर दिया है, फैसले का जौहर दिया है। अल्लाह कहते वहादैना हुन नजदैन, हमने उसको पूरा पूरा समझा के उसको पावर दे दिया है, डिसीजन ये ले, डिसीजन ये ले, इस तरफ ले या इस तरफ ले, डुलमुल नहीं। वो जो डुलमुल होता है वो तो पागल है, तो पागल तो शरीयत का मुकल्लब भी नहीं है। और शक में पड़ा हुआ हो तो वो शक धोखा है। इसलिए बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ने जिंदगी दी है, वो जिंदगी जो आंखों से उजल है, जिसका नतीजा हर इंसान को अच्छे बुरे का वहां देखने को मिलेगा। फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी है। लुकमान अली सलाम ने अपने बेटे को समझाया, तबलीग समझाई, घर में भी बात माहौल बनाया और तबलीग का काम भी समझाया। बेटे अल्लाह की जात का यकीन कर। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। बेटे एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज आसमानों में हो, किसी पत्थर के अंदर छुपी हुई या गुप्त हो, या फिर जमीन के अंदर में हो, तो अल्लाह ऐसे कुदरत वाले हैं कि उसको आनन फानन हाजिर करते हैं। अल्लाह की कुदरत बड़ी है। बहुत से दरख्त हैं तो हर चीज में जोड़ी बनाई है, तो इसमें भी नर नारी है, तो कोई नारी इतनी नहीं दूर है, तो अल्लाह ने उसका निजाम बनाया हवा से, कि हवा से उसकी मुलाकात हो जाएगी और उसमें फल आना शुरू हो जाएगी नारी में। तो अल्लाह उसको कुदरत रखता है। याति बिहा अल्लाह। लुकमान अलैहि सलाम ने अपने बेटे को तबलीग का काम समझाया। या बुनैया अकीमिस सलात, मेरे बेटे नमाज कायम करियो। वामुर बिल मारूफ, दुनिया में अच्छाई फैले इसकी मेहनत करियो। वनहा अनिल मुनकर, दुनिया में बुराई फैल रही हो तो उसको बूच लगाइयो, वो ज्यादा फैले नहीं। वस्बिर अला मा असाबक, और जब भी तू ये काम करेगा तो बहुत सी नागवारियां पेश आएगी, तो उन नागवारियों पर सब्र करना। इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये तो हिम्मत के काम होंगे। तो बोलो हिम्मत करोगे नहीं करोगे, कम हिम्मत तो नहीं हो जाओगे? तो आज तक जिसके 4 महीने नहीं लगे वो कौन आदमी है? कि अल्लाह की 2 जिंदगी 2 मौत, उसके बाद नतीजा है। और खाली ये तो आखिरत की चीज बताई, दुनिया में ईमान आमाल की मेहनत से अल्लाह दुनिया की जिंदगी में बरकतें देगा, आखिरत में अजर देगा। तो अल्लाह के वादों पर यकीन करके हिम्मत करके आज तक जिसने 4 महीने नहीं लगाए वो आज की मजलिस में कौन है पहला जो इरादा करे कि इंशाल्लाह मैं 4 महीने के लिए तैयार हूँ। वादे पर यकीन करके। अरे भाई मैंने कोई गलत बात कही है तो बोलो, हिम्मत करके खड़े हो जाओ। आज तैयार हुए हो? माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्या नाम है? यहाँ जाओ मेरे पास। और कौन तैयार है? जो आज तैयार हुए हैं अल्लाह ताला इनकी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में,